सारा।
अब गंध को देख नहीं रहे, कस्तूरी को छिपा दिया है किसी चीज में और उसका गंध निकल कर वहां लग रहा है, वहां सब लोग सूंघ रहे हैं। वस्तु तो उनके पास नहीं आई किंतु उसका गुण आया ना, शक्ति आई। इसलिए कस्तूरी में और उसमें भेद है, गंध में और कस्तूरी में भेद है। किंतु कस्तूरी नहीं रहने से गंध भी नहीं आएगा, इसलिए अभेद है। आ रहा है समझ में? आग की रोशनी 10 मील से देखी जा सकती है, 2 मील से, 3 मील से देखी जा सकती है, 1 मील से देखी जा सकती है, किंतु आग तो वहां जाती नहीं है, इसलिए शक्ति वहां पर पहुंच गई किंतु आग यहां पर है। यहां पर आग है और ताप वहां पर पहुंच गई, वहां पर ताप लगने लग गया, इसलिए भेद है। किंतु आग नहीं रहने से ताप नहीं निकलेगी, इसलिए ये अभेद है। भेदाभेद अचिंत सर्वभेदेगाय, भेद और अभेद दोनों ही है। और ये कैसा है? अचिंत है, मनुष्य की मेधा से नहीं जाना जा सकता है। तब गुरु परंपरागत जो आमनाय है, श्रुतियां हैं, उनके माध्यम से जाना जा सकता है। श्रुतियां ऐसा कहती हैं, हम लोगों ने कहाँ से जाना? सबसे पहले हमने जैव धर्म में पढ़ा, जैव धर्म में देखा जी कहाँ से लिया, तो बलदेव विद्याभूषण की गोविंद भाष्य से। अच्छा, उन्होंने कहाँ लिया? जब खोज किया तो मालूम पड़ा जी जीव गोस्वामी के संदर्भ से लिया। उन्होंने कहाँ से लिया, कहाँ से लिया? तब विचार जब चलता है तब देखते हैं कि सनातन गोस्वामी से उन लोगों ने लिया। सनातन गोस्वामी ने कहाँ से लिया? स्वरूप दामोदर इत्यादि से। और उनको कहाँ से मिला? इस तरह से भेदाभेद। और संप्रदाय वाले भेदाभेद नहीं लेते, वो लोग भेदाभेद लेते हैं किंतु अचिंत नहीं लेते, वो लोग स्वाभाविक भेदाभेद लेते हैं। भेदाभेद भी 4 प्रकार के हैं। गुरु महाराज जी हम लोगों के बीच बीच में बतलाते रहते थे सब आचार्यों के सिद्धांतों को। हमने बहुत से लोगों से प्रश्न किया, बड़े बड़े विद्वान आपको अपने को मानने वालों, निम्बार्क के भेदाभेद में और गौड़ीय वैष्णव के भेदाभेद में क्या अंतर है? कोई भी नहीं बतला सके, कोई भी नहीं। स्वभाव किसको कहते हैं? और अस्वाभाविक, हम लोगों का स्वाभाविक है, उनका अस्वाभाविक है।
चिंता के द्वारा समझ में आएगा
नहीं, ये सब तो जानना चाहिए। इसलिए हम लोगों का सौभाग्य जब वो सब सुनने को मिला थोड़ा सा, इसलिए वो सब चीजें याद रहती हैं और पुस्तकों को देखने से झट समझ जाते हैं। एक अचिंत भेदाभेद, एक स्वाभाविक भेदाभेद, एक वेदांत का जो सबसे पहले भाष्य किया था विज्ञान भिक्षु का, वेदांत वो जो क्या नाम उनका था जो शंकराचार्य को परास्त किया था, नाम नहीं आता है, विज्ञान भिक्षु, तुम लोग नाम ही नहीं सुना होगा, विज्ञान भिक्षु। एक प्रतिभाषिक भेदाभेद और एक उस जगत में नहीं है, इस जगत में है, ये 4 तरह के भेदाभेद हैं। गुरु महाराज ने अपने अचिंत भेदाभेद या किसी ग्रंथ में ये सब लिखा है, इन सब को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। स्वाभाविक भेदाभेद, वस्तु से जीव और जगत निकला है, वस्तु का रूपांतर है। और अचिंत भेदाभेद में उसकी शक्ति का परिणति है, ये शक्ति से जीव विभिन्नांश है और उन लोगों की दृष्टि से वस्तु से ही विकृत होकर के जीव निकला है, वस्तु परिणामवादी हैं। शंकराचार्य ने इसका खंडन किया। महाप्रभु जी ने कहा सबसे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को, वस्तु परिणामवाद नहीं, शक्ति परिणाम,
शक्ति परिणाम,
शक्ति परिणाम ये बतलाया। इसलिए यहाँ पर भेद है निम्बार्कचार्य से और इसका, विज्ञान भिक्षुक से और एक और कौन है उनका, ये था भेदाभेद शंकराचार्य जी के संप्रदाय के थे। उन लोगों का है भेद और अभेद ये जो दिखता है ये व्यवहारिक है, व्यवहारिक भेदाभेद व्यवहार में ही है। वहां पर कोई वस्तु ही नहीं है, निराकार है, कोई शक्ति ही नहीं है, कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, एकम एव अद्वितीयम का उल्टा अर्थ लेते हैं, सो अहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलिदम ब्रह्म, तो वहां पर कोई विशेषता नहीं है, इसलिए वहां पर गौण रूप में स्वीकार किया गया। प्रतिभाष प्रतिभाषित का मुझे याद नहीं आ रहा सब, अर्थात इस जगत में ही यह है व्यवहारिक रूप में, उस जगत में भेदाभेद नाम की कोई चीज नहीं है। और हम लोगों के इसमें अचिंत भेदाभेद में सर्वत्र ही है, जीव ब्रह्म से निकलने पर भी, उनकी शक्ति से निकलने पर भी उसमें अणुत्व सब समय रहेगा और उसमें स्वभावतः माया के वशीभूत होने का लक्षण भी उसमें विद्यमान रहेगा, भले ही न गिरे किंतु रहेगा, माया के माया द्वारा प्रवण होने का, प्रवणता का वो सब समय उसमें रहेगा। रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैतवाद में उनमें जीव को क्या बतलाया गया, वस्तु का परिणाम, उसकी उपाधि बतलाई गई, इसलिए उसको कहा विशिष्ट विशेषण। इस तरह से हम लोगों के भेदाभेद में यह स्वाभाविक नहीं, अर्थात ब्रह्म से नहीं है, उसके शक्ति का परिणाम ही है, वस्तु में और वस्तु की शक्ति में भेद और अभेद है। जीव में अब ब्रह्म के लिए विचार नहीं किया गया, जो दो वस्तु है उनमें भेदाभेद विचार किया जा रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि किसमें होगा, वस्तु और वस्तु की शक्ति और शक्ति से उत्पन्न होने वाले जो जगत और जीव है, इन लोगों में विचार है भेदाभेद का। तो भेदाभेद अभिचिन्त्य, भेद है नहीं भी है, जन्म है नहीं भी है, सब भेदाभेद शक्ति के द्वारा, शक्ति के तरफ से जब विचार करेंगे तो शक्ति से जीव रूपांतरित हुआ परिणत हुआ है, ब्रह्म से नहीं, किंतु शक्ति किसकी है, ब्रह्म की, इसलिए कह दिया जा सकता है कि ब्रह्म का ही परिणाम है, किंतु सूक्ष्म रूप में जब विचार करेंगे तो ब्रह्म का परिणाम कहने से गड़बड़ हो जाएगा, साधारण रूप में कह सकते हैं। अरे भाई किसका बेटा है तुम, कोई पूछे इनसे आप लोगों से, मैं नारायण महाराज का बेटा हूं, मैं पूज्यपाद बामन महाराज जी का बेटा हूं, मैं ओम विष्णु पाठ श्रीमद भक्ति ज्ञान का बेटा हूं, सभी लोग अजय सामूहिक कहेंगे, किंतु जब खूब सूक्ष्म में विचार करेगा पुलिस आएगा, बोले बेटा अपने घर का बेटा ना, कैसे तुम्हारी बाप और मैया का नाम क्या है, और नहीं तो अभी डंडा, एक डंडा पहले मार करके पूछेगा तो सब अपने आप निकलेगा। असल में हमारे बाप का नाम क्या है, वही पिता है, दूसरा नहीं है, ये असल तथ्य है। इसलिए जो कुछ निकला है सब ब्रह्म से, किंतु ब्रह्म का मतलब क्या है, वो है ना ज्योतो आयमानी भूतानी जायन्ते जैन जातानी जीवंती अभिशंबिशंती तद्वि जिज्ञास तद ब्रह्म। तो जैन जातानी जिससे जीवित रहते हैं और जिसमें समा जाते हैं, तो जीव कभी भी और जगत उसमें समा जाता है कि नहीं, कभी समाया और कभी उनसे निकला जीव, आखिर नित्य है, किंतु क्यों कहा गया, अद्वैज्ञान तत्व के वजह से ऐसा कहा गया। इसलिए तत्व को भी बिना तत्व ज्ञान के भाई ये सब विचार नहीं स्थिर रहेंगे, भक्ति नहीं होती है, इसलिए चैतन्य चरितामृतकार ने लिखा सिद्धांत बोलिया चित्ते न करो आलस, यहाँ होते लागे कृष्ण सुदृढ़। हम लोग सोचते हैं भाई किसी प्रकार से बिना परिश्रम के बिना किसी के रोटी आ जाए और दूसरा कोई भी उसको चिबा ले और हमारे मुख में निकल।
ऐसा
ऐसा कभी है ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। ये तो कहा जाता है इस सृष्टि को देख करके जब इसका प्रलय होता है, वही लोगों को समझाने के लिए कब हुए महाप्रभु का। राधा और कृष्ण पहले थे और कृष्ण भी पहले थे, कौन आगे था कौन पीछे, किससे कौन हुआ, महाप्रभु जी से राधा कृष्ण हुए ना राधा कृष्ण से महाप्रभु हुए, या निर्विशेष ब्रह्म से या परमात्मा से राधा कृष्ण बने और फिर राधा कृष्ण से महाप्रभु, कौन ठीक है। शास्त्र का वाणी है, किसके लिए, किसके लिए, ये शाखा चंद्रनाय ये सब चीजें बतलाया गया है। जीव नित्य है, भगवान की शक्ति नित्य है,
उनका अंदर ही थे।
कहां अंदर में, सूर्य की किरणें और सूर्य कौन युग में पहले आरंभ हुआ, सूर्य की किरण कहने के लिए कहा जाता है कि सूर्य से किरणें निकलती हैं और फिर दिन निकलता है। दिन निकलता है कब, कब निकलता है, सवेरे, आखिर दिन सब समय सूर्य के साथ में लगा हुआ है। ये हमारे जैसे अबोध बालकों को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है ना। यथार्थ में तत्व तो कुछ और है। शाखा चंद्र न्याय से अभी हम लोग अभी निम्न अधिकार में हैं, इन लोगों को समझ नहीं सकते, इसलिए हम लोगों के लिए वेद पुराण शास्त्र में क ख ग घ से आरंभ किया।
जो अभिसंग विसंति का अर्थ क्या है, उनका चरण में आश्रय लेते हैं,
नहीं बहुत से इसके अर्थ हैं, बहुत से अर्थ होते हैं। जैसे चिड़िया घोंसले में प्रविष्ट कर गए, भगवत धाम में वहां पर प्रविष्ट हो गए, अथवा मुक्त हो गए, अथवा कृष्ण की सेवा को पा लिया, ये सब बहुत से अर्थ हो गए अभिसंग विसंति। भेदाभेद अचिंत सर्व वेदेशार, सब वेदों में यही सार है। वेदों में जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि है, तत्त्वमसि भी है। तत्त्वमसि में दो चीज है, तत् तम असि, तीन चीजें हैं इसमें। कहने वाला एक है तंग पदार्थ, एक है तम पदार्थ, ये तीन चीजें इसमें हैं। खूब बारीकी से जाए, इसको निर्विशेष कहते हैं, जिसमें कर्ता है, करण है और अधिकरण है, ये सब चीजें। सातों कारक जिनमें हैं, सातों कारक है और उसको कहते हैं निर्विशेष। तत् त्वम असि, तत् त्वम का यहां पर एक और जो होता है तस्य तम असि, त्वम असि, तुम उनके हो, तुम वही हो अर्थ नहीं है, नहीं तो वेदों के और भागों से इसका कंट्राडिक्शन हो जाएगा। एक ने कहा अरे ये हमारा बेटा तो सिंह है, तो उसके बेटे को नखून आ गया और लंबी दाढ़ी और ये सब हो गया, सिंह बन गया। साहस के दृष्टांत से उसको कहा गया कि ये सिंह, अरे तुम गधा नंबर एक है, तो गधा नंबर एक है माने क्या, गधा जैसा तुम हो गया, आखिर मूर्ख है, बस इतना ही तक। इसी तरह से वेदों में शब्दों का प्रयोग है, इसलिए जितने भी ये सब हैं, ये कौन कह रहा है, अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा कोई नहीं है, एक ही व्यक्ति है, कोई नहीं है, किसको कह रहा है, जे मैं अहम ब्रह्मास्मि, कौन कह रहा है, नहीं, श्वेत केतो, श्वेत केता था ऋषि, उसको वो कह रहे हैं जे मैं ही ब्रह्म हूं, तो इसमें क्या बुरा हो गया? कृष्ण यदि कह रहे हैं ब्रह्म ही पर ब्रह्म कह रहा है, कृष्ण गीता में कह रहे हैं जे मैं ही पर ब्रह्म हूं, ब्रह्म का भी
ब्रह्मनो प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा हम, और मैं ही सबसे बढ़ करके परतत्व हूं, तो इसमें क्या झूठ हुआ? इसमें झूठ नहीं है, ये ठीक है बात। उसी तरह से यहाँ पर और सब विचार कृष्ण कह रहे हैं या परब्रह्म कह रहे हैं, परतत्व जिनके मुख से वेद निकला है वो कहे मैं ही ब्रह्म हूं, तो इसमें क्या हर्ज हुआ? कोई हर्ज नहीं। किंतु जीव कहे जब मैं ब्रह्म हूं तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये सब चीजों का अधिक विस्तार न करते हुए अपने जरूरत की चीजों को मायावाद प्रमाणित करने के लिए शंकराचार्य ने उसको थोड़ा सा बीच से लिया। मैं चोर नहीं हूं इसमें ले लिया, जब मैं चोर नहीं हूं उसमें से अलग कर दिया, इस तरह से चोरी किया। हमारे ऋषियों ने, हमारे जीव गोस्वामी इत्यादि ने अच्छी तरह से उसको कहा, उनमें पूछा जीव गोस्वामी ने, अच्छा जीव ब्रह्म से निकला है कि नहीं? यदि तुम कहो जे निकलता है तो भी दोष,
नहीं कहो
नहीं कही तो भी दोष, तुम कुछ भी कहो, हाँ या ना कह दो, तुम बस मुख से निकाल दो, तुम तो निर्विशेष नहीं है। यदि हाँ कहते हैं तो भी दोष, नहीं कहते हैं तो भी दोष। अच्छा फिर पूछते हैं उनसे एक प्रश्न किया, अच्छा माया सचमुच में कोई पदार्थ है कि नहीं? अच्छा तुम कह दो जे नहीं है या कह दो हाँ, तुम दोनों कहो, में जो कुछ कहेगा हमारे लिए वो ठीक है, हम उसके द्वारा प्रमाणित कर देंगे अपनी बात। यदि नहीं है माया तो ये कैसे ये द्वितीय देखता है, इसलिए उनकी माया है। किंतु कहते हैं माया क्या है तुम्हारी, सत्य है कि झूठ? तो शंकराचार्य जी कहते हैं सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, उभय भी नहीं है, सत असत भी नहीं है, क्या है? ब्रह्म को ऐसे, माया को ऐसे कहा, जीवों को ठग दिया। असल में वेद में एक ही चीज प्रधान है, नहीं तो वेद में सभी कुछ प्रधान है, आज यदि प्रधान है तो प्रणव मात्र, ओम, उसी से समस्त गायत्री निकली, और गायत्री के रूप में, विस्तार के रूप में उपनिषद और समस्त वेद निकले, और सब नहीं तो सभी प्रधान है, और नहीं तो एक प्रधान और बाकी सब अप्रधान। चार वाक्यों को शंकराचार्य जी ने कहा जे वेद के यही प्रधान चार वाक्य हैं, नहीं एकमात्र प्रणव है। कहां लिखा गया है वेदों में ये चार अहम ब्रह्मास्मि तत्तमसि सोहम प्रज्ञान ब्रह्म, कहां लिखा है? जैसे ये महाभारत, और कहां लिखा है कि ये जो कृष्ण इत्यादि है व्यवहारिक ब्रह्म है, और निर्गुण जो निर्विशेष जो ब्रह्म है वही सत ब्रह्म है, कहां लिखा है? किसी वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में, कहीं भी कहीं नहीं। शंकराचार्य जी को भगवान के आदेश से ये प्रमाणित करना था, इसलिए उन्होंने कुएं को चबूतरा प्रमाणित कर दिया और चबूतरे को कुआं प्रमाणित कर दिया। यदि सियारदास बंगाल का एक बैरिस्टर यदि ऐसा कर सकता है 10,000 एक दिन का फीस लेकर के एक घंटे का, तो कृष्ण ऐसी सब चीजें नहीं कर सकते। अच्छा अब हम लोग फिर आते हैं भेदाभेद प्रकाश, ये सर्व वेदों का सार सिद्धांत है, दोनों तरह की बातें वेदों में लिखी गई है, इसलिए दोनों बातें वहां पर सत्य है। वस्तु शक्ति चित स्वरूप भावेते संदिनी, वस्तु शक्ति जो है वो क्या है? उसका स्वरूप है चित, यही कृष्णत्व है, यही कृष्ण है। कृष्ण का स्वरूप क्या है? वदन्ति तत्व विद सत्यम यज ज्ञानम अद्वयम, चित स्वरूप है कृष्ण, कृष्ण का स्वरूप चित, राधा जी का लादिनी और बलदेव प्रभु है संदिनी, जीव अनुचित है इसीलिए, आनंद और संधिनी को वहां पर थोड़ा सा हटा करके। अच्छा, तो ये चित स्वरूप और भावे तेल संधिनी और क्रिया ते हलादिनी ताई तीन भावधारिणी, ये वस्तु जो है, वस्तु शक्ति जो स्वरूप शक्ति है, वो तीन के रूपों में है। अधिशात्र सत्ता का विस्तार करने वाली संधिनी और उसको ऊपर में ज्ञान भाव का रूप धारण करता है और उस भाव में आनंद जब युक्त हो जाता है सच्चिदानंद होकर के अत्यंत नित्य सिद्ध स्वरूप, उसके ऊपर में भाव और उसके ऊपर में आनंद, तब यह सच्चिदानंदत्व कृष्ण में होता है। हलादिनी में क्रिया है, कैसे क्रिया है? ज्ञान में ज्ञान एक तरह से निर्विशेष है, किंतु जहां हलादिनी आई ना, कृष्ण को देख करके आनंद हुआ, तो कैसा आनंद हो रहा है? मुख में तरह तरह के भाव वर्ण सब निपल रहे हैं, रोमांच कंप अश्रु पुलक इत्यादि हो रहे हैं, ये सब क्रियाएं हैं। ज्ञान में ऐसा नहीं, ज्ञान जब क्रियात्मक रूप में हो जाएगा तो वही विज्ञान होगा। इसलिए स्वरूप शक्ति जो है ये तीन रूपों को धारण करने वाली है। वस्तु शक्ति द्वारे वस्तु देह परिचय, वस्तु का कोई परिचय अपना नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जैव धर्म में लिखा है, वस्तु कहाँ नहीं है, अणु अणु परमाणु में सर्वत्र है, किंतु उसका परिचय क्या है? वस्तु का परिचय मिलता है उसकी शक्ति के द्वारा, शक्ति की क्रिया के द्वारा। देखो कैसी चीजें ये सब बनाई है भगवान ने, उसके द्वारा भगवान की उद्दीपना होती है, ठीक समय पर सूर्य उदित होता है, ये कैसे होता है? उनकी शक्ति की क्रिया से। समुद्र में लहरें आती हैं, अभी ऐसा नहीं मालूम होता, किंतु देखोगे, जब देखोगे विचार करेंगे तब। अच्छा, हमारे अंदर में बुद्धि कहाँ से आई? एक परमाणु सा मैया के पेट में गया और वहां पर समस्त अंग इतने विकसित होकर के निकले और ये बढ़ता 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 उसमें दांत सुंदर, मुख नाक आंख कान युक्त अत्यंत सुंदर एक लड़का या लड़की पैदा, उसमें बुद्धि हुई, चलने की शक्ति, ये कहां से आई? जब विचार करेंगे देखेंगे आज तक कोई ऐसा बना नहीं सका, विज्ञान ने बहुत उन्नति की, ये सब चीजें नहीं। कोई चीज वस्तु बनाया किंतु उसमें सेंस आए, जैसे एक भगवान ने पेड़ बनाया, पेड़ लगाया गया, उससे फल निकला, फिर वो झड़ गया, फिर उससे पेड़ हो गया। आज से पहले जब सृष्टि हुई थी तब से ऐसा ही क्रम चल रहा है। अब विज्ञान कोई चीज बनाए तो एक कोई फल बनाए, कोई कुछ बनाए, कोई भी चीज बनाए, एक मशीन बनाया, उसे अपने आप एक मशीन और पैदा हो जाए, ये नहीं। जब ये विचित्रता पर हम विचार करते हैं तब हम दंग रह जाते हैं, ओहो ये कैसी चीज। न्यूटन ने देखा जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, किंतु जिसने दी इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कैसे हुई, इस पर विचार करने में आदमी मुक्त हो जाता है। इसलिए वस्तु की जो शक्ति है वो अचिंत है। वस्तु शक्ति क्रिया जोगे सर्व सिद्धि है, वस्तु शक्ति जो है शक्ति उसकी क्रिया जो के द्वारा हम साधन भजन करके जब भक्ति को अपने हृदय में लाएंगे, और यही भक्ति जो साधन भक्ति है भाव भक्ति, और भाव भक्ति प्रेमा भक्ति में परिणित होगी, और वही प्रेम क्रम से स्नेह मान प्रणय राग अनुराग होकर के महाभाव होकर के जब लादनी का रूप आनंद का रूप धारण करेगा तब सर्वसिद्धि होगी। सर्वसिद्धि मैंने क्या, जीव का जो जैसा स्वरूप है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के स्वरूपतः हुआ कृष्ण की सेवा करेगा अपने रस के द्वारा, अपने स्वरूप के द्वारा। अखंड वस्तु ते भाव क्रिया नित्य है, अखंड जो वस्तु कृष्ण है उनमें भाव और क्रिया, अखंड तो वस्तु है ना, यह हुआ संधिनी, इसी को कहते हैं विशुद्ध सत्व, सत्तम सत्तम वसुदेव शब्दितम, और वसुदेव को जो प्रकट कराता है उसको कहते हैं, वसुदेव से जो प्रकट होता है उसको कहते हैं वासुदेव। ये कृष्ण ही यथार्थ वासुदेव रूपी अखंड अद्वैय ज्ञान वस्तु हैं। उन्हीं में भाव और क्रिया दोनों, भाव माने संधनी का भाव और ह्लादिनी की क्रिया, तभी वो रसराज महाभाव होते हैं, जी उनकी सेवा करके धन्य हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु इसी चीज को देने के लिए जगत में आए थे। शक्ति शक्तिमान वस्तु तबो पृथक न है, अखंड है, शक्ति को वस्तु से विच्छिन्न नहीं किया जा सकता, तो भी पृथक न पृथक है, अपृथक नहीं भी है। ह्लादिनी वस्तु के दिया दुईटी स्वरूप, ह्लादिनी जो है वस्तु को दो स्वरूप में परिणत करती है। ह्लादिनी जो है ना, कौन है ये? राधा कृष्ण का प्रणय विकार, पहले बतलाया प्रणय कैसे होता है, अपने आप प्रणय हो जाता है ना, दो वस्तुओं में होता है, दो वस्तुओं में प्रणय होता है। तो वस्तु तू थी नहीं और उधर में प्रणय हो गया, ये कैसे हुआ, यही आश्चर्य की बात है, इसी को ये आगे ये बतलाएंगे। तो ह्लादिनी जो है यह प्रणय विकार जिसको ह्लादिनी कहते हैं, उसने वस्तु को अद्वैय ज्ञान पर तत्व को दिया दुईटी स्वरूप, दो स्वरूप दिया, कौन कौन, ब्रजे राधा और कृष्ण, ये दो स्वरूप दे दिए। अपरूप, अपरूप माने उसके समान और कोई असमोर्ध तत्व है, असम और असमतिशय। ह्लादिनी कहां से आई, उस ह्लादिनी ने राधा कृष्ण को दो रूप में प्रकाश किए। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी, अरे भाई ये तो पहले से बतलाया, क्या बतलाया, ये जो ह्लादिनी है वो क्या है, राधा कृष्ण के प्रणय की विकृति। तो वो तो थे, राधा कृष्ण तो थे नहीं, किंतु उनका प्रणय विकार कहां से आ गया, कृष्ण से पहले, जिस प्रणय ने दो रूप में ह्लादिनी को दो भागों में प्रकाश कर दिया। आ रहा है समझ तमझ में, तुम्हें भालो कर पूछो तो। बाप नहीं था बेटा हो गया, समझ रहा है, बाप मैया नहीं थी, बेटा ने माया को और बाप को जन्म दिया, ये बात ठीक है कि गलत है, जगत के लिए ये झूठ है, किंतु वहां के लिए वो उनसे उत्पन्न भई राधा कृष्ण के प्रणय का विकार ह्लादिनी, और उसने राधा कृष्ण को, ठीक ऐसे ही बात है, अघटन घटाई ते पारे धरे महाशक्ति। अरे ये जो बतलाया ना ह्लादिनी, ये अघटन नहीं होने वाले को भी करा देगी, अघटन वस्तुओं को जो घटने वाली नहीं है, संभव नहीं, उसको संभव बना देगी। निर्विकारे करिया छे विकार अनुरक्ति, और निर्विकार कौन है, परतत्व, उसमें कोई भी विकार नहीं, किंतु उनमें भी विकार अनुरक्ति के द्वारा विकार उत्पन्न कर दिया। उनका विकार कैसा है, जैसे बहुत दिनों के बाद में किसी प्रिया ने अपने प्रियतम को देखा, देखते ही दोनों के मुखारविंद को पढ़े, कितने भाव उतरते हैं चढ़ते हैं, कभी रंग अलग अलग तरह का होगा, कभी लाल सुर्ख हो जाएगा, कभी कुछ होगा, जैसा जैसा भाव आएगा, साधारण आदमी नहीं समझ सकेगा, कैसे कैसे भाव उतराव आ रहे हैं चढ़ रहे हैं, कभी आंखों से पानी आएगा, कभी हंस मंद मंद मुस्कान भरी आएगी भी, और कभी कभी कुछ और भाव, कभी विप्रलंब का भाव, कभी मिलन के आनंद का भाव, सब मिला करके एक बड़ी आस्वादनीय वस्तु हो जाती है, किंतु ये कृष्ण में है तो, और भक्तों के अंदर में, संसार में है, इसीलिए तो संसार मुग्ध होकर के भगवान जैसे वस्तु का भजन नहीं करता, इसीलिए माया बड़ी प्रबला है, ऐसी चीजों की सृष्टि करके बच्चे दे देगी, बच्चा दे करके मैया को या सब लोगों को मुस्कुरात थोड़ा सा देता है, बस सब कुछ लोग उस पर न्यौछावर कर देते हैं। ये जगत के प्रेम में जो काम कहलाता है इसमें इतना इतनी मादकता है, ऐसा कोई भी जड़ जगत में गधे से लेकर के घोड़ा, बंदर, बंदरी, मनुष्य, देवता, गंधर्व तक, अंत तक शंकर और ब्रह्मा तक ले लो, सब इसी के पीछे पीछे नाच रहे हैं। तब उस प्रेम में कैसी होगी? वो प्रेम ऐसा है जो कृष्ण को ना चाहता है, उनके भक्तों को ना चाहता है, गोपियों को ना चाहता है, वो सबको नचाता है और अपने भी नाचता है। कहीं ऐसा चैतन्य चैतामृत में ही वर्णन है, प्रेम एक ऐसी चीज है। तो इसलिए देखो निर्विशेष में विकार ये कर दिया, एबे एक उठिल अपूर्व पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष किसको कहते हैं? एक उत्तर पक्ष और एक पूर्व पक्ष। उत्तर पक्ष किसको कहते हैं और पूर्व पक्ष प्रश्न को कहते हैं, और उत्तर पक्ष कहते हैं उसके उत्तर को। एक एबे एक उठिल अपूर्व पूर्व पक्ष, एक अपूर्व पक्ष पूर्व पक्ष प्रश्न उठता है, संदेह उठता है। तार्किक ना बुझे यदि चिंते सर्व लख वर्ष, तार्किक ना बुझे यदि चित्ते चिंते वर्ष लख, एक लाख वर्ष तक चिंता करते रह जाए उसके दिमाग में नहीं आएगा। एक लड़का था, पढ़ता था, देखा जी मैया रसोई बना रही है और केटली में, बटलोई में पानी है और ऊपर से एक ढकना रख दिया था हल्का सा ना। थोड़ी देर के बाद में देखा जैसे वो आवाज हो रही है, लड़के ने कहीं कहाँ से आवाज आ रही है, देखा जैसे ढक्कन कभी ऊपर उठता है निकल जाता है, ऊपर उठता है और जब गिरता है तो आवाज होती है ना। बारीकी से देखा, भाई ये उठता है और फिर गिर जाता है क्यों? फिर उसने विचार किया ये जब उठता है ना तो उसमें से कुछ भाप सा निकलता है और जब भाप निकल जाता है तो फिर वो गिर जाता है, फिर भाप होता है, फिर ऊपर उठा देता है। उसने उसे एक और भारी चीज उस पर रख दी, थोड़ी देर के लिए बंद होगा, इसके बाद में ऐसा जोर से उठा जो उसको ऊपर फेंक दिया। भाई इसमें से बड़ी शक्ति है, तो इसे हम रेल का इंजिन क्यों नहीं बना सकते हैं? रेल का इंजन बना दिया उसे। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, भगवान की जो शक्ति है, जब उस पर विचार करते हैं तो चित्ते एकदम चमत्कार हो जाता है। विचार करते हैं, भक्ति भी ऐसे ही है, भगवान भी वैसे हैं, उनकी शक्ति भी ऐसे ही है ना? तार्किक नहीं समझा, हम लोग तो रोज ही रसोई बनाते हैं, कभी देखते हैं विचार किया, उसके पहले भी तो लाखों लोगों ने रसोई बनाई हो, देखा होगा जो ऐसा क्यों होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने देखा, विचार, उसके पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पृथ्वी में नहीं था, आकर्षण शक्ति उसमें नहीं थी, किंतु उसने रियलाइज किया। कहते हैं कि अनुसंधान किया, क्या अनुसंधान किया, क्या अनुसंधान किया? उसके पहले हमारा संकर्षण शब्द नहीं है हमारे शास्त्र में, पृथ्वी को सबको ब्रह्मांड को उन्होंने उस आकर्षण शक्ति से सबको परस्पर बिना आधार के रोक रखा है तो पहले से शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे। मंत्रों में शक्ति कैसी है? सब लोग तो पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण या पद्म पुराण और सब। एक अंग्रेज पढ़ा, कहते भाई लक्ष्मण जी ने एक सीता जी को मना किया, वो मानी नहीं, इनको रामचंद्र जी के पास में भेजा, उन्होंने अपने धनुष के नोक से एक लाइन खींची, इसके बारे में मत जाना। रावण आया, खड़ा हूं और दंड लेकर के, त्रिदंड लेकर, कहा जैसे तुम चलो हमारे साथ में, भिक्षांग देही भिक्षांग देही भिक्षांग देही, हाँ और इसे नहीं बात और भिक्षांग देही, जब से बोला तो वो निकली नहीं, मैं नहीं निकलती इसे, नहीं देखो मैं अभी संपात करता हूं वो मर जाएगा, और नहीं तो जल्दी से निकल, तभी निकल रही है। तो वो खड़ाऊ पहन करके और भीतर जाना चाहता है, और जब ही जाता है बिजली करंट निकलती है। यह बात झूठ है कि सच है?
सच है।
उस पर उन्होंने विचार किया, आविष्कार। हम लोग इसको जड़ विद्या मानते हैं, चेतन विद्या नहीं मानते। शुक्राचार्य इत्यादि ये बड़े बड़े ऋषि लोग होंगे, ये सब कर देंगे। ये बाण इत्यादि का फेंकना, ये सब क्या चीज है? यही विज्ञान है। किंतु हम लोग इसको अत्यंत है आसुरी समझ करके हमारे ऋषियों ने इसको दूर किया। इसे सुख और शांति नहीं, असल चित्त विज्ञान भगवत प्रेम है। इस चीज को कहिए, तार्किक लोग इन चीजों को नहीं समझेंगे। यदि चिंते वर्ष लक्ष एक लाख वर्ष तक चिंतन करें। कृष्ण जब एक कृष्ण जा रहे कृपा करे से ही मात्र जाने, जिस पर कृष्ण कृपा करते हैं वही जान सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा अपनी बुद्धि से चार माथों से सिर से मस्तिष्क से चिंतन किया, इधर देखा आठ आंखों से इधर उधर, कोई था नहीं मिला, कुछ नहीं कर सके। तब उन्होंने प्रार्थना की, अथापि ते देव पदाम्बुज प्रसाद लेशानुग्रहीश प्रसाद लेश अनुग्रहीश, बस एक थोड़ी सी प्रसाद उनकी कृपा हो जाए उसे ये सब कुछ को जान सकता है। अन्यथा कोटि कोटि जन्म जन्मांतरों तक उसको समझ करके कुछ नहीं समझेगा। लख वर्ष चिंतिता ना बुझे आने राधा कृष्ण प्रणयेर विकार ला देनी, प्रणयेर परे जन्मे चित्ते उन्मा देनी। और प्रणय के पहले ही राधा और कृष्ण के अंदर में प्रणय को से उन्मादिनी कर रही है। राधा कृष्ण प्रणय विकार हलादिनी, राधा और कृष्ण के प्रणय के विकार को हलादिनी कहते हैं। अरे प्रणय के प्रणय परे जन्मे, प्रणय के बाद में चित्त को उन्मादित होने पर तब फिर ऐसे भाव आते हैं। दोनों में मिलन नहीं होगा तो प्रणय नहीं होगा, उसका विकार भी नहीं होगा। किंतु राधा कृष्ण दुई होले है तो प्रणय, राधा कृष्ण दोनों होंगे तब तक प्रणय, उनके होने के पहले ही ये तो प्रणय है। और उन दोनों को दो रूप में ये कैसे हुआ? प्रणय ले तबे घटे विकार घट है, दुई देह हवार आगे विकार ना छिलो। दोनों देह के होने के पहले विकार तो था नहीं, प्रणय दो आदमी नहीं है, प्रेमी और प्रेमिका कभी नहीं मिले, कभी नहीं मिले। किंतु दोनों के प्रेम से फिर वो मिले हैं, तब क्या हुआ? दोनों में कभी भेंट ही नहीं, या फिर प्रणय कैसे हो गया जब वो मिले? कहते हैं तबे एक रूप दुई कैमने होइल, तो ये कैसे ये संभव है? लादनी होते है दुई भेद भेद, दुई देह भेद। लादनी के द्वारा राधा और कृष्ण दोनों ये शरीर प्रकट हुए, कोथा वह लादनी छिलो होइल प्रभेद। हलादनी तो पहले थी नहीं, तो राधा कृष्ण के बाद में हुई, तो ये कहां से वो थी जो इनको दो भागों में विभक्त किया? यही प्रश्न एकमात्र अच्छे तो उत्तर, देश काल अतीत कृष्ण तत्व निरंतर। भाई एक ही उत्तर है, क्या है? राधा कृष्ण जो हैं इस काल के देश काल के अतीत है, प्राकृत नहीं है। अचिंत्या खलु ये भावा न तांतार के न जो जे प्रकृतिभ्य परम जच्चा जदे अचिंतस्य लक्षण। भाई ये जगत का विचार उसमें नहीं चलेगा, इसलिए कृष्ण जो हैं परात्पर और उनकी शक्ति और शक्ति से प्रकटित चीजें ये सब क्या हैं? कालातीत वैकुंठ धाम में। अब इसको अच्छी तरह से विचार हम लोग अब कल की व्याख्या में करेंगे।
जाकल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
राधाकान्त नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हा देवी काकुभर गदगदयाद्वाचा जाचे निपत्त भूवि दंडवत उट भटारती अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणे गणनं। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मंदे कृतेंदीवरं जाट्टं जागुट रोचिसां विदधतं पट्टं वरस्य। मिंदारण्य निवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितज्वलभुजं ध्यायेन् दामुः भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणा गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां चरणं यत्किङ्करीषु वौषा खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले यस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाय तत्कीलिकुञ्जभवनङ्गनमर्हि
चैतन्य चरितामृत पाठ करते समय अचिंत भेदाभेद के संबंध में कुछ बतला रहे। इसको जानना बहुत जरूरी है। मैं बतला रहा था नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद शिष्णु भक्ति प्रज्ञान के सो गोस्वामी महाराज जी हम लोग के आस्पदीय गुरु पाद पद्म जी। बहुत प्रारंभ में हम लोग को थोड़ा सा हिंट दिया था ये सब दार्शनिक विचारों के। उन्होंने बतलाया था जो श्री संप्रदाय का जो विचार है विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का विचार शुद्ध द्वैतवाद और विष्णु स्वामी का और निम्बादित्य का इनको भी चार चार बतलाया। ये एक एक को चार चार बतलाया और अचिंत भेदाभेद के बतलाने समय उन्होंने बताया भेदाभेद भी चार प्रकार का निम्बार्क इत्यादि का जो विचार है निम्बादित्य का ये स्वाभाविक भेदाभेद है। कल हमने बतलाया था भास्कराचार्य का विचार वो है औपचारिक भेदाभेद औपचारिक उपचार से औपचार बतलाएं भास्कराचार्य और एक और कोई है विज्ञान भिक्षु का प्रतिभाषिक भेदाभेद और हम लोगों का है अचिंत भेदाभेद। पहले समझ लो स्वाभाविक भेदाभेद क्या है। अजय क्या होगा ये सब जानकर भक्ति राज्य में विशिष्टता के भेदाभेद भेदाभेद जरा भेदाभेद वादी तहाँ देर के उन्हीं लोगों के संबंध में बता रहे। रामानुज भेदाभेद ही नहीं है। मध्वाचार्य ने स्वीकार किया है इसे अचिंत भेदाभेद ही स्वीकार किया है। उनका अलग अलग विचार चार संप्रदायों में केवल भेदाभेद निम्बार्क का और हम लोगों का मध्वाचार्य जी ने परोक्ष रूप में उसको ग्रहण किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने इसी बेसिस के ऊपर में ही उस संप्रदाय को ग्रहण किया। भेदाभेद ठीक है किंतु जहाँ पर भेद और अभेद है वहाँ पर भेद ही प्रबल है। इस चीज को ग्रहण करके और वो भेद है और अभेद है अचिंत श्रुति अर्थापत्ति, श्रुतियों के द्वारा जाने जाएगा, गुरु परंपरा के द्वारा ये जाने जाएगा, ऐसे नहीं अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं। स्वाभाविक भेदाभेद को थोड़ा सा समझो। स्वाभाविक भेदाभेद मैंने अद्वैय ज्ञान पर तत्व एक है, एक ही परतत्व है, वही स्वयं जीव और जगत के रूप में प्रकटित हुआ। तो जीव के रूप में जब प्रकट हुआ तो उसका यह विकार हुआ, जीव गोस्वामी ने इस विचार का खंडन किया। इसे तो वस्तु में ही परिणाम हो जाता है, उनका अंश यह जीव हुआ, यह जगत हुआ। तो शंकराचार्य ने जो इसका विरोध किया वो ठीक है, वस्तु में स्वगत स्वजाति और विजातीय कोई भी भेद नहीं है। अब इसको बतलाने के लिए फिर समय चाहिए। स्वगत सजातीय भेद विजातीय भेद ब्रह्म में नहीं है, वस्तु एक ही है अद्वैय ज्ञान तत्व, उसमें भेद नहीं है। भेद की जो प्रतीति जैसे होती है उसको कहते हैं विशेष, भेद नहीं किंतु भेद जैसे। आंख में और हमारे अंदर में भेद नहीं है, वैशिष्ट है। आंख ये शरीर का एक वैशिष्ट है, ये सब मिला करके एक है। ऐसे तो स्वाभाविक माने होता है स्वभाव से ही, स्वभाव माने शक्ति के द्वारा स्वभाव, स्वभाव से ही ब्रह्म परब्रह्म एक अद्वितीय ब्रह्म जीव के रूप में कोटि रूपों में प्रकाशित है नित्य काल से। इसको कहते हैं स्वाभाविक। निकले हैं जब तो उनमें भेद भी है अभेद भी है, भेद है अभेद है चिन्मयता का, दोनों चित वस्तुएं हैं किंतु